તારીખ 19/3/1996 સમકિતનું બીજ આર્ટિકલ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 87A.
માવના ये सब पुरुष के लिए लागू पड़ता है या भगवान के लिए भी लागू मैंने भगवान की जगह मानी है परमात्मा का भगवान का भाई तो पहले तो ये भी कम तो समझो कि पहले प्रत्यक्ष में क्या करता है
उस समय प्रत्यक्ष हुए तब क्या हो
जिस समय भगवान की वाणी प्रकट होती है तो वहां पर वाणी की भावनिता होती है या अन्य
भगवान की वाणी भगवान की उपस्थिति में जो निकलती है और नहीं निकलती है तो भी तो हमें तो अधिक जीवन में उपकार मिल जाता है फिर भी हम संसार में होकर हमारे लोगों के साथ होकर हमने संक्राम दिया है इनका कोई तो करेगा इनका कोई तो भगवान से तो बहुत जीवों को लाखों करोड़ों जीवों को लाभ होता है
मकाई के दानी बनाते मकाई का
फुले भगवान के नाम सुनने वाले और बड़ी संख्या में करोड़ों को करोड़ों लोग बैठे हैं तथा अपना खुले जैसे प्रकार के होते रहते हैं ऐसे सुनने वाले पूरी आत्माओं के परिणाम में
खास प्रकार का क्या भूल रह गया होगा वहां पर कि हमारे
यहाँ पे भूल रहा निरंतर प्रोग्राम माधो चौबीस प्रकार के विषय होते हैं और उनके रूप बहुत होते हैं उनके तेज बहुत होता है शरीर का रूप बहुत होता है
महाविद्य क्षेत्र में तो बीस प्रतिशत का ताकत सही है
हाँ कोई अपने कहा है अनेक प्रकार की कल्पना जो कर रहे हैं अनेक और अनेक विषय में समझते रहे होंगे और दूसरे दूसरे कारण के कारण से दूसरे जगह के प्रति हमारा परिणाम चलता हुआ इस प्रकार के जो विकल्प
जीव को होने नहीं मिलता। मुझे अनुभव के कारण है एक दो दिन के राम के कारण है तो ऐसे ही वहां पर ऐसा पहले का मैंने देखा है कि खेल पानी किनारे पर होता है वहां पर उठता हूँ पानी मिलता हो गहरा हो वहां पर डूब जाए लेकिन किनारे पे मेन पानी है उसमें कौन डूबेगा। इस मौसम जो किनारा है बहुत मजा किनारा है वहां पर हम पीले नहीं डूबे तो जैसे उसको आश्चर्य का एक बात है इसका मतलब बहुत सुंदर करे उसको खोले और कितने मतलब करे उसको ही करते लोग जैसा करके पानी में कोई चिंता कम करके प्रबंध होगा पानी जाने में गर्म होगा इतना उनके प्रणाम में चले होंगे पश्चाताप करना चाहिए। हम जो हो गया तो हो गया अभी वो भूत ध्यान है तो सुधार सकते हैं अभी होता है इस पंचम काल में धर्म की प्राप्ति दुर्लभ होने पर भी सुगम भी है अगर जीव आत्म कल्याण का निर्धार करे तो सुगम है दुर्लभ हो गया जो विषय करता था वो है कि पूर्व में हो गए महापुरुषों का चिंतन कल्याणकार है उनके चरित्र का चिंतन करें चरित्र बने आकर तो अवश्य जीव का दर्शन हो कुछ अंश में मन होता है इसलिए वो बिल्कुल विकम्मा है वो हर कहेंगे कहने का आशय यहां पर नहीं है तथापि ये क्या है प्रकृति गौरवता का कार्य नहीं हो सकता ऐसे चिंतन से कोई अंतर भी नहीं हो सकता और उसमें उम्मीद नहीं हो सकता और उसमें एक जो हो सकता ये विकल्प हो गया विकल्प से आगे नहीं जा सकता और वो सबसे थोड़ा कठिन जो हो सकता है लेकिन गौरव चिंता तक पहुंचने में कोई विकल्प सामने नहीं आया क्योंकि जीव को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए यह बात उनके स्मरण से समझ में नहीं आती क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो उस शरीर से जो जो महापुरुष गुजरे उसको समझ में आता है लेकिन हमको हमारे वर्तमान भूमिका में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बात समझ में नहीं आती इसके आचरण से जो कुछ हमारे क्रम में आती है वो आती ही है लेकिन हमारा प्रयोग तो हमारी वर्तमान भूमिका में सबसे आगे बढ़ देता है जहां हम खड़े हैं वहां से एक कदम तक से हम आगे बढ़े तो ये सार्थक होता है कोई बात प्रत्यक्ष योग होने पर बिना समझाए भी मेरे मौत रहने पर भी बिना समझाए बिना बोले भी
स्वरूप स्थिति का होना हम संभवित मानते हैं। ध्यान रखने का बिना समझाए हमने इनकी जो उदय भाव में चेष्टा है और ज्ञानादि के काल में जो चेष्टा है इस चेष्टा इनका परिणाम को व्यक्त करती है और वो परिणाम संवेदनात्मक होने के कारण से ये परिणाम संवेदनात्मक होने के कारण से वेदन वेदन को उत्पन्न करता है। जैसे दृष्टांत मिले हमें किसी भी प्राणी को दुखी देख करके किसी भी प्राणी की वेदना से पीड़ित देख करके हमें पीड़ा क्यों होती है? होती है कि नहीं होती?
होती है।
किसी भी मनुष्य हो रोग की पीड़ा से बहुत पीड़ित हो जरूरी नहीं हो हमारा प्रकाशी हो समझे नहीं होने के दुख देख करके दुख हो रही है परिणाम में कोमलता है इतना ज्यादा मनुष्य क्या रास्ते में गिरा हुआ है तो पीड़ित होगी। अगर कोई गाड़ी या कोई खराब में आ जाता है तो पीड़ा हो जाती है तो बेहतर परिणाम आते हैं तो पर्या की उत्पत्ति कहां से हुई? दूसरे के वेदन को देखते हुए जिसको वेदना आता है कोमलता के कारण तो वो परिणाम मालूम नहीं है और तुम्हारा तो वहां पर खाते थे और ये मान सकते मान खाते हैं तो परिणाम उनकी वेदना बनी गई है। लेकिन जिसके कोमल परिणाम ये किसी भी निर्दोष प्राणी को देख करके उनकी वेदना देख करके वेदना में खाई लेना रहेगा ऐसा विभिन्न नैमित्तिक संबंध है वेदना वेदना को उत्पन्न करे ये तो मात्र ही रखा का विषय है पर ये बात है स्वरूप संवेदन की जिन्हें जो परमात्मा विराजमान है तो उनकी वाणी नहीं सुन सकती पात्र जीवों पात्र जीवों को उनका अनंत संवेदन नजर आता है। कितना है ज्ञानी लोगों को जो संवेदन है वो इनके आगे हमें प्रमाण है जो कि परमात्मा को विधेयक देव को अनंत संवेदन अभी को दर्शाने देता है तो जिसको नजर आता है उसको संवेदन चालू होने का ये प्रक्रिया इनके आगे हमें तैयार की बात ये तो भूमिका हो जाती है किसी विषय के अनुसंधान जी ने बहुत सुंदर बातें संजय कर दी तो इसको भव्य के पत्र में इसी विषय के अनुसंधान में सबसे महत्व के विषय का प्रतिपादन किया है। ग्रंथ में सारा जो संकलन है उसमें उनके पत्र में आ रहा है भी लिखा के पहले होंगे कुछ पत्र नहीं है
ना।
उसको मामूली पत्र के रूप में नहीं देखना चाहिए केवल उनके दृष्टिकोण से तो जिम्मेवारी के रूप में देखना चाहिए। विशेषकर प्रेम की माने तो जिम्मेवारी नहीं लेकिन यही वाणी के और आगे के परंपरा से जो दूसरे साधक हुई या चतुर्थ की वाणी है उन्हें भी आगे उन्हें विचार कर रहे थे उनके वाणी को भी गिरवाणी के मिले। तो ऐसा जो महत्वपूर्ण विषय चार पालन हुआ उनको पत्र के रूप में साधारण विषय की गंभीरता को प्रकट कर रहे और अपनी रचना योग्यता में उपयोगिता समझने समझ करके इसका पूरा पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। इसको मौके में इन मार्गों के विषय का प्रतिपादन किया है कि निरंतर प्राथमिकता के क्रम का सेवन करना क्या मार्गदर्शन दिया है मनुष्य को पूरे भाव में बाल्य जीवन में जो जो पूर्वकर्म के प्रथम फापड़े ऐसी लगातार निरंतर आते रहेंगे संसारी जीवों को आत्म प्रवक्ता उन्हें निरंतर चालू रहता है। एक दूसरे व्यक्ति में एक या दो समय के लिए आई कर्म चालू कह रही है सात कर्म का होगी तो वहां भी चालू है कारण महीना काम करके जाता है तो एक या दो समय यहाँ का आयु पूरा होगा तो नया आयु जहाँ भी जन्म होगा वहां से चालू होगा वास्तव में वो गुजरता है एक समय या दो समय के लिए सीधे गांधी तो सब आयु पर चाहो नहीं होता क्या करता तो आठों पर उसे हुए थे किसी भी कर्म प्रसंग में अपेक्षा एक अपेक्षा करना जिनको नया कर्म बंधन रखा जाता है
बराबर
नया कर्म पुराने मंदिर में आया वो तो खेल जाएगा और नया अगर उसमें रख लेता
लेकिन हमने कौन सी चीज लिया व्यवस्थित रूप से कुछ बात कहने का कर्म से उतरा सकता करते कर्म मैंने यथार्थ रूप से उतरा सत्ता का प्रारंभ होना चाहिए और यथार्थ का रही तो उदास सत्ता क्रमश बढ़ती जाएगी, उदास सत्ता की डिग्री क्रमश बढ़ती जाएगी और उदासीनता यथार्थ प्रकार से अगर आई और पड़ी तो जैसे अध्यात्म का दर्शन होगा, क्या होगा अध्यात्म का दर्शन होगा, स्वरूप आश्रय होगा, अध्यात्म तत्व का अवलंबन आएगा, वरना उदासीनता तो होगी लेकिन अध्यात्म तत्व मिलेगा का उद्देश्य नहीं है। त्याग वैराग्य का उद्देश्य तो सभी आस्तिक के दर्शन में है और वेदांत आदि में तो बहुत बड़े पैमाने में उन लोगों ने तो सारा आश्रम स्थापित किया है, उसमें पच्चीस साल से 50 साल तक की उम्र में व्यवस्था स्थापना किया है और 50 साल के बाद वहां प्रस्ताव को आश्रम दिया है। वहां प्रस्ताव को माने व्यवसाय संकलन होकर के अपने आत्म कल्याण के लिए तैयारी लेकर लेकिन कारोबार छोड़ दे और गृहस्थी की दूसरी जगह से भी अपने और अपने प्रदेश को नहीं किसी में भी मन लगाना नहीं और पितों का साथ के बाद संज्ञा कहते हैं संज्ञा को हो जाता है घर छोड़ कर आपके दर्शन में त्याग लेने का उद्देश्य कला है, वेद दर्शन में भी बहुत कला है, अंतर वो है तो वेद दर्शन में इसका क्रम स्थापित किया गया है। इस अनुक्रम से अगर नहीं चले तो और अपनी मनमानी कर ले तो निराशा जैसे कहीं बच्चों की समझ नहीं होती है रोग के लिए जैसे देव प्रताप रुपयों की रोग के लिए समझ नहीं होती और यही हालत वर्णन हो रही थी भूतकाल में भी हुई थी और वर्तमान में भी अज्ञानता के कारण से ज्ञान करने के कारण से समझाने वाले जो महापुरुष है उन्होंने ये भी कहा कि देखो महापुरुष के संग में रहना ज्ञानी पुरुष के संग में रहना उदासीन का जरूरी है और जो बहुत बड़ा करो और सत्संग करते रहो ये बात नहीं ऐसी बात नहीं है। सत्संग के आने वाले जीव को सत्संग के दौरान के जीवन को चिंता करें आत्मशुद्धि के लिए उदासीनता जरूरी है और उदासीनता का अभाव होने तो जो भी प्रसंगों में जो राग किसको कहते हैं? पर विलास, पर विलास को राग कहते हैं। वेद्या के स्थिति में निवेश दादा जी उसका निषेध करता रहता है, उसको निषेध करता है। और उस प्रक्रिया के दौरान उनको राग होगी तो अपना परमात्म स्वरूप की पहचान होती है, तब तो इसकी विलासिता इंद्र मात्रा में पूरी की जाती है। तो मेरा स्वरूप ही निरालंब निरपेक्ष है, मेरा स्वरूप किसी अन्य पदार्थ से और राग से स्वतंत्र कर नहीं सके, ऐसा असत्य है। ऐसा निर्लिप्त तत्व को स्वयं अनुभवांश से इस प्रकार से अनुभवांश से प्रतीक ने विश्वास में देखा तो उनके उदासीनता और बड़ी स्वरूप की महिमा में डूबा हुआ है। इतना महिमा स्वरूप है जो पहचान देने आया, तो इतना महिमा है कि इसकी महिमा पूरी पूरी हासिल हो गई तो महिमा से ही डूबा रहता है। और इस महिमा की डिग्री बढ़ती जाती है, प्रतिक्षण प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ती जाती है, पर उसमें से उसको मुमुक्षुता के चरम सीमा के परिणाम हो जाते हैं। उस स्वरूप की भूमिका होता है, उस स्वरूप में से वो बात निकलता नहीं। ये सभी प्रकार के परिणाम होने में प्रत्यक्ष हुआ है, इसलिए इस बात को वो कहीं भी हो सकता नहीं। अरे जब ज्ञानी हो जाए, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो भी वो गुरु के उपकार को और गुरु के गुरु को हो सकता नहीं है। और उसका सेंस देखना है तो गुरु उन्हें संभालना करके उत्साह है उसके साहित्य में गुरु की निर्भर तैयारी है। ऐसे क्रम से उदासीनता उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है। अन्य प्रकार से उदासीनता आती है तो भी आगे जाकर के मूल में से आत्मा का बदलाव नहीं हुआ होने से उदासीनता निष्फल जाती है। क्योंकि जैसे पेड़ में कोई पत्ते को तोड़ता है लेकिन मूल में इससे पानी गिरता रहता है, आगे जाकर पत्ते यानी ये पेड़ वो मनक में लगता है फलता है तो प्रत्यक्ष देखने में आता है। लेकिन जिसका मूल कट गया या जल गया, इनके पत्ते कुछ काम तक हरे दिखेंगे, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सुख जाएंगे और फिर जाएंगे तो रहने वाले। ये सही पद्धति है कि गौरव को मिटाना है तो गौरव की वेदना से निकाल करो, मूल में से मिटाना है तो ये मिटेगा, दूसरी पद्धति से मिटाया भी नहीं जाता। कोई भी दूसरा नाम का भगवत और गौरव की वेदना से इस दूर में से मिलने का प्रारंभ होगा। लेकिन इस गौरव को ताकत छूट जाएगी, गौरव है जैसे कोई रोग अपने दूसरा रंग में बढ़ता पानी के जाने का प्रकार अलग होता है, जाने का प्रकार भी
उदासीनता और क्रम वाली उदासीनता प्रकृतिगत में
लगे जो अक्रम से उदासीनता आती है प्रकृति के साथ संसार में भी इतने ढेर बद्ध प्रकार की प्रकृति वाले होते हैं और कितने ढेर बहुमत की तीव्र प्रकार की प्रकृति के वाले हैं। लेकिन प्रकृति के अनुसार प्रकार की योग्यता के कारण जो उदासीनता आती है उस उदासीनता से दो रुपए से करोड़
वेदना वाले जीव को देख करके वेदना है वो भी ठीक नहीं, वेदना वाले जीव को देख करके वेदना है वो भी ठीक नहीं।
ठीक है, इसके पीछे वेदना आए तो वेदना आगे बढ़े और पूर्णता के लक्ष्य में परिणित हो जाए, तब तो कोई आपत्ति नहीं। प्रारंभ हो सकता है प्रकृति वेदना को लेकर के वेदना आए ऐसा एक निर्मित
जीवन है, यथार्थता
लेकिन आधारों में होना चाहिए दूसरे का प्रयत्न। आधार को अपने समझ का होना चाहिए
बिल्कुल
कि हमारा मैंने भ्रमण हमें बिताना है और कुछ बिता नहीं सकेंगे। ये परिश्रमण की तलवार कच्चे धागे पर लटक रही है, भाव भाषित होना चाहिए। ऐसा भाव भाषित होना चाहिए कि अगर इस मनुष्य आयु में अगर हम परिक्रमण का रास्ता सही उपाय करने का रास्ता नहीं पकड़ेंगे तो ये परिक्रमण की तलवार कच्चे धागे पे लटकती है, कभी भी गिरेगी, हमारा आयु पूरा हो जाएगा तो परिक्रमण के खतरे में। और जो मनुष्य साढ़े साठ के आयु हो चुके हैं उनके लिए सूर्य बहुत कम बाकी है। 50% तो उसने 50% से ज्यादा तो उसने हो गया और जितना होगा उतना तो बाकी नहीं रहा है। ऊपर वालों को समझ लेना कि बहुत कम आयु बाकी रहा और वो भी निश्चित है, वो भी निश्चित है और नियमित है। ऐसा समझ करके संसार के कार्यों में रस लेकर वेदना छोड़ दे और उदासीनता के क्रम में प्रवेश करें। सत्संग को बनाए और सत्संग को और कुसंग कुसंग को तो भूल से भी करें, कुसंग करने का जिस समय से हमारे में दुर्गुण पैदा हो या दुर्गुण वृद्धिगत हो ऐसा कोई भी संग ऐसे दुर्गुणी जन्म का संग भूल से भी करना नहीं और संपर्क के विरोध करने वाले चाहे त्यागी हो चाहे विद्वान हो चाहे सज्जन गिना जाता हो लेकिन जो विद्रावी देव गुरु और अभिमान और शत्रु हत्या का अगर माफ करता हो विरोध करता हो उनका शत्रु भी भूल से भी करना
नहीं नहीं
वरना सत्संग में आएंगे तो भी उन्हें कर जाएगा जिसको ऐसा परिणाम रहता है कि हमारे परिणाम में बल नहीं आ रहा है, उनका यही कारण है कि फल सत्संग और सफल प्रश्न समय के उसको ज्यादा रहता है। तो यही कारण है कि सत्संग का अंत कर करके परिणाम में जोर नहीं आता है। आत्मकल्याण के लिए जोर नहीं आता है, परिणाम निश्चित होता है। निरंतर उदासीनता का क्रम सेवन करते करते अब आगे बढ़ने के लिए सत्पुरुष के संग में कैसे रहना
जी
पूछेगा। उसके बाद सब इनको बोलते हुआ
शुक्र